प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान अतिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरमीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदगुणं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां शरणललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, वी विल वेट फॉर सम मोर टाइम, लेट्स सी एवरीवन कैन कम राइट। It's tiring, huh? Slowly, they should not lose enthusiasm. I'm such a boring speaker. कुछ लोग सामने भी आ सकते हैं यहाँ। नहीं ज्ञाने न सब कृष्ण कोई प्रश्न है, चर्चा करेंगे कुछ? नो प्रश्न। ज़्यादा योगासन कीजिए प्राणायाम से भी, वो पहला चीज, क्योंकि जनरली जो वो योग के, हमने एक योगा टीचर से मिले थे, वो बीके सायंगर था ना, उनके शिष्य थे, वो बताते थे कि पहले योगासन करना चाहिए, बाद में आसन करना चाहिए, बाद में प्राणायाम। वो आता है ना, पहले यमा नियमा आसना और प्राणायाम, ऐसे आता है। तो आप साथ साथ में करिए, क्योंकि हमारा योग, हमारा पद्धति तो अष्टांग योग नहीं है, पहले आसन करेंगे फिर, लेकिन ज़्यादा योगासन कीजिए, प्राणायाम थोड़ा कम करना चाहिए। हर रोज अलग अलग कर सकते हैं, आज एक वो प्राणायाम में भी अलग अलग होते हैं ना, और योगासन भी हर रोज अलग अलग कर सकते हैं, ताकि हम लोग सभी, क्योंकि आधा घंटा में तो सभी योगासन नहीं कर पाएंगे, है ना, हर रोज अलग अलग कर सकते हैं। ऐसे आपको जो अच्छा लगता है वो भी चुन सकते हैं उसमें क्योंकि हमारा तो ये अष्टांग, और या आपको कुछ तकलीफ है उसके अनुसार भी हम लोग कर सकते हैं। किसी को बैक एक है वो उसके जो सूटेबल जो योगासन है वो कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में हमारा वहाँ पर नंद गोकुलम गौर ग्राम भी कहते हैं उसको, वहाँ पर एक भक्त बहुत विचलित हो गए क्योंकि हम लोगों ने इसको करने के लिए बोला बहुत ही विचलित हो गए, हम लोग मिश्र भक्ति कर रहे हैं, ऐसे 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 बहुत सारा चीज़ बताया उन्होंने प्रभुपाद जी के अलग अलग जो भक्ति क्या है, योग ज्ञान ज्ञान कर्मादिनावृतम, ज्ञान कर्म और योग से आवृत नहीं होना चाहिए। वो शुद्ध भक्ति मतलब ज्ञान कर्म योग आदि से आवृत नहीं होता है। तो आवृत होने का क्या अर्थ है, भक्ति कम कर रहे हैं ये चीजों को ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, उसका अर्थ है वो पहला चीज आवृत, हम लोग आवृत नहीं कर रहे उसको, भक्ति को शुद्ध भक्ति को हम लोग इससे आवृत नहीं कर रहे, ये पहला चीज है। दूसरा चीज है वो बता रहे थे हम योगा लैडर में नीचे आ रहे हैं ऊपर जाने के, हम शुद्ध भक्ति क्या है ऊपर है और उसके नीचे आ रहे हैं, वो योगा लैडर का गलत समझ है। तो क्योंकि हमने पढ़ा ना उस दिन जब हम लोग वो बुद्धि योग को चर्चा कर रहे थे, तो जैसे वो बढ़ता जाता है, पहले कर्म योग के स्तर पर सिर्फ कार्य रहता है, एक्शन रहता है, उसे ज्ञान और वैराग्य का वृद्धि हो गया तो क्या हो जाता है, व्हेन कर्म योग इंक्रीजेस इन ज्ञान एंड वैराग्य नॉलेज एंड रिनाउंसिएशन प्रभुपाद राइट्स देयर ना, तब क्या हो जाता है ज्ञान योग हो जाता है। जब दैट इंक्रीजेस इन मेडिटेशन दैट बिकम्स ध्यान योग, सो ज्ञान योग व्हेन इट इंक्रीजेस इन मेडिटेशन देन दैट इज ध्यान योग, दैट मीन्स दैट इंक्लूड्स द प्रीवियस कंपोनेंट्स ऑल्सो। सो सिमिलरली व्हेन डिवोशनल सर्विस इंक्रीजेस दैट बिकम्स भक्ति योग, भक्ति योग इंक्लूड्स ऑल अदर कंपोनेंट्स। अभी ध्यान भक्ति योग में है, मेडिटेशन आप कैसे उसको सिद्ध करेंगे बताइए, हम लोग चैंटिंग सुनते हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ध्यानपूर्वक सुनना ही चैंटिंग है ना, और भी कई अंग भी है मेडिटेशन ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड और डिवोशनल एक्टिविटीज, वो आप 10वें अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु के 10वें अध्याय खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चलता है, वहाँ पर रिमेम्बरेंस मेडिटेशन हियरिंग ऐसे चार अंग वर्णन करते हैं 10वें अध्याय में। मेडिटेशन उसके लिए वो उदाहरण देते हैं, आप जानते हैं ना वो प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे, उनको बताया गया कि भक्ति के ऊपर भक्ति के जो जो कार्य है उनके ऊपर ध्यान करना भी क्या है वो भी भक्ति है, ऐसे बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आप भक्ति के कार्य करना चाहिए करके, इसलिए उन्होंने क्या किया जब वो सुना, क्योंकि तो गरीब थे वो भक्ति के कार्य तो नहीं कर सकते थे, भगवान को फूल लेकर आके चढ़ाना फल लेकर आके चढ़ाना वगैरह कर नहीं पाते थे, या श्रृंगार करना भगवान के, ये उसके लिए बहुत कुछ तो धन लगता है कि नहीं, तो उन्होंने क्या किया वो तुरंत ही गोदावरी में स्नान किया उन्होंने, और वहाँ पर ये भी बताया गया प्राणायाम का अभ्यास किया उन्होंने तो प्राणायाम का अभ्यास करके मन को वो शांत बनाया उन्होंने, शांत बना के क्या किया उन्होंने, सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? शांत बना के वो भगवान के सेवा के ऊपर ध्यान करने लगे। मैं अभी भगवान को नहला, गोदावरी के जो जल है उससे नहला रहा हूँ, फिर उसको कपड़े से पोंछ रहा हूँ भगवान के शरीर को, फिर उनको श्रृंगार कर रहा हूँ, उनके लिए भोग बना रहा हूँ। भोग बनाया उन्होंने, भोग बना के वो खीर बनाया उन्होंने विशेष करके। जनरली खीर को जब वो ठंडा हो जाता है तब अर्पण किया जाता है, वो बहुत और स्वादिष्ट हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो उन्होंने सोचा देखो, पहले तो देखूँ तो कि ये ठंडा है या गर्म है, ऐसे वो हाथ ऐसे डाल दिया उन्होंने, तो उनके हाथ जल गया तुरंत। वास्तव में वो खीर नहीं बनाए थे उन्होंने, सिर्फ ध्यान कर रहे उसके ऊपर, लेकिन उनके हाथ जल गया। वो जो जलन है वो वास्तव में हुआ, लेकिन जो खीर बनाया था वो मन में ही बनाया था उन्होंने। तो तुरंत ही भगवान इसको देखकर हंसने लगे वैकुंठ में, और लक्ष्मी देवी ने पूछा क्यों हंस रहे करके। तो फिर वो विष्णु दूत को उनको भेज के उनको लेकर आने के लिए बोलते, तब उनको बताते हैं ये सब चीज़। तो ऐसे हुआ करके। कर्म के जो कारण है उसका दार्शनिक अध्ययन, दार्शनिक चर्चा। तो इससे हमें इसके साथ क्या समझ में आता है? भक्ति योग में अष्टांग योग भी है, वो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग एक्टिव सर्विस इसलिए कर रहे हैं, हमारा ध्यान उतना हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर ही ध्यान नहीं कर पा रहे हम लोग। भक्ति के सेवा को कैसे ध्यान करेंगे? उसके लिए बहुत ध्यान का बहुत मन बहुत शांत होना चाहिए। वो अंग को हम लोग वो भी पालन करते हैं, हम लोग भगवान के विग्रह के रूप में हम लोग ध्यान करते हैं। तो इसलिए भक्ति जो है वो सभी अंगों को, सभी योगों को, लेकिन भक्ति में हम लोग वो आवृत नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? वही प्रमुख चीज नहीं होना चाहिए, ध्यान प्राणायाम करना ही प्रमुख चीज नहीं होना चाहिए, हमारे भक्ति सेवा वो प्रमुख चीज है। तो इसलिए, और जब उन अन्य योग पद्धतियों के जो अलग अलग अंग है उनको हम लोग भक्ति में उपयोग करेंगे तो वो भी भक्ति के गौण अंग बन जाते हैं। वो सीधा अंग नहीं, सीधा 64 अंग वर्णन किए गए, लेकिन वो 64 अंगों को ये सहायता करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए वर्णाश्रम, वर्णाश्रम भी क्या है? वो कर्म योग है, वो बस गुण कर्म विभागशः कर्म योग है ना, वो वर्णाश्रम मतलब गुण के अनुसार कर्म बताया गया है, इसलिए कर्म योग। वो विष्णु को केंद्र में रख के वो वर्णाश्रम का पालन किया जाए, कर्म को पालन किया जाए, इसी को स्वधर्म भी कहते हैं, वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। तो फिर हम लोग क्यों, प्रभुपा जी अलग अलग जगह पर लिखते हैं, हमारा जी हमारे आंदोलन का वो एक उद्देश्य है कि हम वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। तो हम लोग अभी ब्रह्मचारी आश्रम में हैं, ये भी वर्णाश्रम का अंग है। जो अनुकूल कारक है हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं अलग अलग अन्य अन्य योग पद्धतियों में। वैसे ही प्राणायाम या कोई योगासन करते हैं तो वो अनुकूल अनुकूल होगा, और ज़्यादा अच्छा सेवा कर पाएंगे हम, मंगल आरती उठ पाएंगे। नहीं तो कुछ साल के बाद क्या होगा? तो हम लोग अब जो कम से कम साधना जो है वो भी कर नहीं कर पाएंगे, सुबह उठना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे हुआ है बहुत सारे भक्तों को, वो अभी पछता रहे, वो अभी सबको बता रहे अभी हमारे जैसे मत कीजिएगा। ऐसे बहुत वरिष्ठ भक्त भी है हमारे आंदोलन में, तो जो बेसिक साधना भी नहीं कर पा रहे अभी। वो उन्होंने बहुत सारा सेवा किया पहले, तो अभी वो उनका शरीर उसको ये साथ नहीं देता है। तो वो जब युवा रहते हैं इसके बारे में कुछ चिंता नहीं करते, जब थोड़ा बूढ़ा हो जाते हैं तो तब पता चल जाएगा क्या कितना शरीर तकलीफ देगा। हम शरीर नहीं है बोलेंगे, लेकिन बाद में शरीर को समर्पित होना पड़ेगा। अभी समय नहीं देंगे तो अस्पताल में समय देना पड़ेगा, है ना। अच्छा है ना। और वो भी अस्पताल में जब आपका अस्पताल में भी वो जो वो सुधार का कार्य होता है, रिफॉर्मेटरी एक्टिविटी, वो बहुत तीव्र रहता है, उतना आसान नहीं रहता है। आजकल बहुत ट्रीटमेंट कितना तकलीफदायी होते हैं ना, पता है ना। वैसे तो पहले ही बता गया वो भागवत में, ट्रीटमेंट जो है वो समस्या से भी ज़्यादा कष्टदायक होता है। और उसका हम लोग वास्तविक रूप को हम लोग अभी समझ सकते हैं, दिखा सकते। अभी तो एलोपैथी के प्रगति के कारण वो और भी कष्टदायक हो गया है, तो इसलिए अच्छा है हम पहले से ही जागरूक रहे। वो बुद्धिमान का लक्षण है ना। क्या होता है 20-25 मिनट हर रोज देंगे तो, सिर्फ 20-25 मिनट, 24 घंटा तो नहीं करेंगे। 24 घंटा करना वो भक्ति नहीं है। ठीक है। अभी सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, हर रोज मंगल आरती में लेट 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 लेट, है ना। आगे जाके क्या होगा, थोड़ा शरीर दुर्बल हो जाएगा। अभी युवावस्था में ऐसा स्थिति है, दुर्बल अवस्था में कैसे हो, है ना। ठीक है। तो हम लोग यज्ञ के बारे में चर्चा कर रहे थे। यज्ञ मतलब तुरंत आप ऐसे मत सोचिए, अग्नि और उसमें ईंधन घी डालना वो भी है, लेकिन यज्ञ मतलब अलग अलग नियत कर्म को यज्ञ कहते हैं। अलग अलग लोगों को अपने आध्यात्मिक स्तर से सर के ऊपर, अपने वर्ण के अनुसार, अलग अलग प्रकार के जो कर्म होते हैं उनको यज्ञ कहते हैं। तो उनके बारे में वर्णन किए। अभी भगवान कहते हैं कि जो ऐसे यज्ञ नहीं करते हैं तो उनका क्या होगा। तो श्लोक क्रमांक 31, नायम लोकोस्त्ययज्ञस्य कुतोन्या कुरु सत्तमा। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तो यज्ञ नहीं करेंगे तो हम लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। तीसरे अध्याय के 10वें श्लोक में क्या बताते हैं भगवान, हम लोगों ने चर्चा किया ना। उन्होंने सृष्टि करके, सृष्टि में एक प्लान दिया ना उन्होंने, क्या प्लान दिया उन्होंने, सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्वद्वम येष वो इष्ट काम दुख। उन्होंने कहा सृष्टि करके मनुष्यों को और देवताओं को, और यज्ञ भी उनके साथ उन्होंने सृष्टि किया और आशीर्वाद दिया, ये यज्ञ करके सुखी रहो, ऐसे बोले। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं इस लोक में भी सुखी नहीं रहेंगे और परलोक में भी सुखी नहीं रहे, आगे के जीवन में भी सुखी नहीं रहे। तो इस लोक में, इस जीवन में ही सुखी नहीं रहेंगे तो आगे के जीवन में कैसे सुखी होंगे, ऐसे बोल रहे। तो भौतिक समाज में सभी लोग क्या प्रयास कर रहे हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए। जब तक वो यज्ञ नहीं करेंगे, नियत कर्म नहीं करेंगे, वर्णाश्रम के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, वो सुखी नहीं हो सकते। तो इस तात्पर्य बहुत अच्छा प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कैसे आपको अन्न का भी चिंता नहीं करना पड़ेगा। ये यज्ञ का पालन करेंगे तो अन्न का भी चिंता नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ हमें अपना नियत कर्म करते ही जाना है। तो ये अन्न के बारे में चिंता करना पशुओं का है, ये पशुओं का कार्य है या पशुओं का स्तर है, वो हमेशा जो अन्न के बारे में चिंता करना, ये मनुष्य समाज नहीं है। आजकल देखिए सब लोग उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं और कुछ नहीं करना सोच रहे हैं, तो कैसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे लोग, है ना। कैसे प्रगति करेंगे आध्यात्मिक जीवन में? मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे वो अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पापपूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पापपूर्ण जीवन का कारण है और पापपूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। क्यों हम लोग वो दुख क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग पाप करते हैं। पाप क्यों करते हैं? अज्ञान के कारण। मनुष्य जीवन अज्ञान क्या है? भगवान को भूलना, वही अज्ञान मूलतः। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकलने का अवसर प्रदान करते हैं। वो धर्म क्या है? इसमें पहला चीज, चार चीजों में, चार पुरुषार्थों में पहला चीज क्या है? धर्म है। धर्म क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म, हम लोगों ने चर्चा किया है। वेद प्रणय तो वेद वर्णाश्रम धर्म ही बताते हैं, है ना। तो वर्णाश्रम धर्म वेदों के आधार पर है और वेद वर्णाश्रम के धर्म को बताते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं का स्वतः हल कर देता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यहाँ पर आर्थिक इकोनॉमिक ऑटोमेटिकली सॉल्व अवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किसी को खाने रहने के लिए वास करने के लिए और कपड़े के लिए सोचना भी नहीं पड़ता था। आप कल्पना करेंगे ऐसा समाज के बारे में, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं, आप अपना नियत कर्म करते जाना, बस अपने आप सभी प्राप्त हो जाता। लेकिन असुर लोगों ने ऐसे समाज बना दिया, पशु समाज बना दिया, जहां हमेशा इसके बारे में चिंता 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 से मर जाते हैं लोग। सब लोग सो मच चिंता में है ना, एंजाइटी में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसीलिए इतना मेहनत करते हैं, गधे की तरह मेहनत। आप जाइए कंपनी में जाके 2-3 दिन ऐसे देखिए उनको क्या करते हैं वो लोग, पर कितने सारे चिंता में है और हमेशा काम करते रहते करते रहते करते रहते करते रहते, क्योंकि उनका आर्थिक विकास के बारे में चिंता रहता है। और प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन प्रचुर दूध इत्यादि इत्यादि मिलता है। आजकल भी बहुत सारा चीज यू नो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो वास्तविक भोजन नहीं है या वास्तविक दूध नहीं है, वो सब वो हमें चिंता से मुक्त नहीं करने वाला और इतने प्रयास से उसको प्राप्त किया जाता है ना, बहुत प्रयास करना पड़ता है ना उसको प्राप्त करने के लिए। प्रयास करने के बाद भी हमें असली भोजन या दूध नहीं मिलता। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार की यज्ञ हमारे आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्टि करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्र तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सान्निध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जाती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है? तो ऐसे ये धर्मार्थ काम जीवन ऐसे उसको व्यवस्थापित किया गया था ताकि इस जीवन में सुखी रहे और अंत में भगवद्धाम वापिस चले जाए। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा की तो व्यर्थी है। विभिन्न स्वर्गों के में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त होता है। हम लोग तो यज्ञ इसलिए नहीं करेंगे कि इस जगत में सुखी रहे और अगला जीवन में सुखी रहे। हम लोग यज्ञ अंत में भगवान को प्रसन्न करने के लिए और इस भगवत धाम इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवत धाम लौट के जाने के या भक्ति हमारा यज्ञ। अतः कृष्ण भावना भावी जीवन ही इस भौतिक जगत के समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। तो अगला श्लोक, एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एवं बहुविधा यज्ञो वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद समस्त है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो इसको तीसरे अध्याय में भगवान ने विस्तार से किया कैसे यज्ञ होते हैं। यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्माद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो वही चीज़ फिर से यहाँ पर दोहरा रहे इन। लेकिन ये सभी यज्ञ भगवान ने अभी जो वर्णन किया है वो सभी वेदों में बताया गया है, वेदों के द्वारा ही उत्पन्न है या कर्म से वो उत्पन्न होते हैं। कर्म करने से ये यज्ञ संपन्न होते हैं। हमने बताया ना बार बार कि यज्ञ मतलब सिर्फ अग्नि जला के घी नहीं डालना, कर्म करना, नियत कर्म करना, समझ में आ गए, वो यज्ञ होता है। जब हम लोग कर्म कहते हैं मतलब वेदों में हमारे गुण के अनुसार जो कर्म बताए गए हैं उनको यज्ञ कहते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेदों में इसको इन रूप से जानने से आप मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले बताया जा चुका है वेदों में कर्ता वेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन है अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर मन तथा अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु ये दूसरा चीज है कि ये सभी यज्ञ क्या है, ये तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है, देह मन और बुद्धि। ऐसे भी उन्हें विभाजित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। हम लोग द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ ऐसे दो विभाग में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी यहाँ पर भगवान द्रौपदी जी तीन विभागों में भी वर्णन कर रहे हैं इसको, तो वो भी करने के लिए कोशिश कीजिए फिर। देह से, मन से और बुद्धि से किए जाने वाले यज्ञ, तीन प्रकार के यज्ञ। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसी की पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञाद ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वकर्माखिलं पाता ज्ञाने परी समाप्यते। तो अभी इन सभी यज्ञों में कौन से श्रेष्ठ है उसके बारे में भगवान बता रहे। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो सभी जो यज्ञ है यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है, और सभी यज्ञ क्या है, दिव्य ज्ञान में अवसान होना चाहिए और होते हैं। तो कर्मकांड और ज्ञान कांड, इनको द्रव्यमय यज्ञ को कर्मकांड भी कह सकते हैं और ज्ञानमय यज्ञ को ज्ञान कांड भी। इस तात्पर्य के अंत में से प्रॉपर ज्ञान ही उसका सर्वोच्च, समस्त यज्ञों का यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होना हो जिसे। और जब ज्ञान ज्ञान हम बोलते हैं तो क्या है उसका अर्थ, क्या है बताइए।
संबंध
संबंध ज्ञान, दिव्य ज्ञान, वो मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और कृष्ण भगवान है और उनके साथ मेरा नित्य संबंध है, ऐसे ज्ञान में वो परिपूर्णता प्राप्त होती है। इस स्तर तक आने के लिए ये सब किया करते थे वैदिक सभ्यता में लोगों को इस स्तर तक, अभी भी हम लोग कोशिश करते हैं ना लोगों को ये ध्यान देने के लिए, हम लोग प्रवचन देते हैं घंटों घंटों और उनको पर्सनल प्रीचिंग भी करते हैं उनके उनके सर में डालने के लिए, कितने समय लगता है ना, एक सालों लग जाते हैं वो लोगों को ये समझने के लिए, मैं कृष्ण भक्त ही मैं हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति ही करना चाहिए करके, कितने सालों लग जाते हैं ना। तो वैसे वैदिक समझ में भी उनको धीरे 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 ऐसे अलग अलग यज्ञों में उनको लगा के उनके गुण के अनुसार क्या करते थे, ऊपर उठाते थे। तो इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में, वर्णाश्रम के बारे में, कि हमारा कार्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है प्रचार का कार्य, नहीं तो सर पोड़ पोड़ के रखना पड़ेगा तो वही कार्य करना पड़ेगा, है ना। अंत में कुछ लोग मिल जाते हैं जो कुछ लोग मिल जाते हैं उसे, अन्य लोगों को भी हमें कृष्ण भावनामृत में लगाने के लिए ये व्यवस्था करना पड़ेगा। ये दिव्य ज्ञान ही क्या है, आगे जाके भगवान वर्णन करेंगे, वो दिव्य ज्ञान ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है बस। समस्त यज्ञों की यही प्रयोजन है कि जीव पूर्णतया प्राप्त पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों के विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को इस रहस्य ज्ञान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप में धारण कर लेते हैं। जब ज्ञान कर्ता कि श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाता है जाते हैं और इससे इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं पा हो पाता। दूसरे शब्दों में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अंत में भक्ति में जो भक्ति सिद्धांत है या भक्ति में वो परिपूर्णता प्राप्त होना चाहिए, सब ज्ञान ज्ञानमय यज्ञ या द्रव्यमय यज्ञ को करके वही ज्ञान है। उसी को दूसरे अध्याय के 46वां श्लोक में भगवान ने बताया, वो क्या बताए, यावान अर्थवदपान सर्वथा संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक बड़ा सरोवर जो होता है छोटे छोटे कुओं का सभी लाभ प्रदान करता है, जैसे ही वेदों के जो अनुष्ठानों का जो पूरा उद्देश्य जान चुका है उसको वेदों के उद्देश्य प्राप्त होते हैं। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने क्या श्लोक उल्लेख किया, अहो बतन सुपचतव गरियान यज्जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपः जुहु शश्नुरार्य ब्रह्मानुचरण नाम गृणन्ति एति। जो जिह्वा के अग्रभाग में जो नाम का उच्चारण करते भगवान के, वो लोग ये सब यज्ञों को कर चुके हैं, ऐसे बोलते हैं। वो यज्ञों को करके उनका अभी ये वो ज्ञान में परिपूर्णता प्राप्त किया उन्होंने, वही ज्ञान क्या है, भक्ति है, या नामों को उच्चारण करना, समझ में आ गए, भक्ति का सार नामों का उच्चारण करना, तो वो चीज यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं, यथार्थ ज्ञान का अंश कृष्ण भावनामृत में होता है, यथार्थ ज्ञान का अंत, रियल नॉलेज कल्मिनेट्स इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसको भक्ति वेदांत कहते हैं। वेद का मतलब ज्ञान और अंत मतलब अंत, सर्वोच्च ज्ञान, वही भक्ति है, या सिद्धा भक्ति सिद्धांत, निष्कर्ष, सभी सिद्धांतों का जो निष्कर्ष उसको सिद्धांत, या सभी ज्ञान का जो निष्कर्ष है उसको सिद्धांत कहते हैं, तो वही भक्ति सिद्धांत भी है, वो भक्ति है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, जब वो मेरे नाम सुनते हैं मायावादी लोग, वो आश्चर्यचकित होते हैं कि वेदांत कैसे भक्ति हो सकता है, ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि मायावादी लोग वेदांत को अध्ययन करके भक्ति के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, वो लोग ब्रह्म में लीन होने के निष्कर्ष, ब्रह्म में लीन होना मतलब सेव्य सेवक भावना जो है उसे वो नष्ट हो जाता है उसमें, तो इसलिए वो लोग हमेशा ब्रह्म के चिंतन करते हैं, वेदांत में भी वो ब्रह्म को ही ढूंढते हैं वो बस, या जड़ और ब्रह्म के बीच में क्या अंतर है उसके ऊपर ही विश्लेषण करते रहते हैं। लेकिन भक्ति वेदांत का निष्कर्ष भी क्या है, भक्ति है, सार क्या है, भक्ति, वो समझ नहीं पाते। वेदांत सूत्र में भी पहले पहले अध्याय में संबंध ज्ञान दिया गया है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेश इतर चार देश, दूसरे अध्याय में अभिधेय ज्ञान दिया गया है, और तीसरे और चौथे में प्रयोजन ज्ञान दिया गया, तो संबंध अभिधेय प्रयोजन वहां पर भी है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। सो हम लोग श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, सिर्फ सेवा करेंगे तो क्या हो जाता है, वो कर्म बन जाता है, कर्म से आवृत हो जाता है भक्ति। किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर पर पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना वेद के अनुसार ये यज्ञ कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। श्रील प्रभुपाद 42वें श्लोक के तात्पर्य में भी इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ज्ञान कांड मतलब सिर्फ आत्मा के बारे में ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ज्ञान कांड में भी दो विभाग होते हैं, या ज्ञानमय यज्ञ में भी दो विभाग होते हैं, एक आत्मा के बारे में ज्ञान, दूसरा है परमात्मा के बारे में ज्ञान। यहाँ पर इस श्लोक में जो भगवान ज्ञाने परिसमाप्यते मतलब ये परमात्मा के ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, समझ में आ गए। दो प्रकार के यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ और ज्ञानमय यज्ञ। ज्ञानमय यज्ञ क्या है, वो आध्यात्मिक है, और उसमें भी दो प्रकार है, एक आत्मा के बारे में ज्ञान, दूसरा है परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में ज्ञान। तो यहाँ पर जब श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात ज्ञानमय यज्ञ, तो द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ भी सर्वे कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, तो अंत में वो परमात्मा के ज्ञान में वो परिपूर्णता होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो अगले श्लोक, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया शांति दे ज्ञानम ज्ञान नस्तत्व दर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो इस श्लोक में तीन चीज भगवान बता रहे हैं। पहला गुरु की आवश्यकता, दूसरा शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए, और तीसरा क्या है, गुरु का भी क्या लक्षण होना चाहिए, वो भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो इसके पहले कहाँ पर है ये सब चीज वर्णन हुए थे, पहले बताइए। कार्पण्य दोष पात स्वभाव शामिकाम धर्म सम्मोड़ चेता यशेषा निश्चितम रूहित में शिष्य से हम शादी मान। वहां पर क्या क्या वर्णन हुआ था हमने बताया था, शिष्य के पहला गुरु की आवश्यकता। मैं कार्पण्य दोष से प्रभावित हो गया हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेतिस हो गया हूँ, आई एम इन कन्फ्यूजन, कन्फ्यूज हो गया हूँ, उससे मुक्त होने के लिए गुरु की आवश्यकता होता है, वो पहला चीज। और दूसरा चीज शिष्य को के क्या लक्षण होते हैं, वो शिष्यस्ते हम शादी मानता हूँ, वो शरणागत होना चाहिए भगवान से, और क्या जिज्ञासा करना चाहिए, श्रेष्ठ निश्चितम ब्रूहितन में सर्वोच्च श्रेय के बारे में जिज्ञासा, वो दो लक्षण शिष्य के बताया था मैं। जिज्ञासु श्रेय उत्तु तद विज्ञानार्थम सगुरुमेव अवगच्छन्, नहीं वो नहीं, जिज्ञासु तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, सो जिज्ञासु श्रेय उत्तम होना चाहिए, उत्तम श्रेय के बारे में जिज्ञासा करना। यहाँ पर भी आवश्यकता, कैसे आवश्यकता के बारे में, और इस अध्याय के आरंभ में भी गुरु के एक प्रमुख लक्षण के बारे में हम लोग चर्चा किया, वो परंपरा के प्रतिनिधि है, वो गुरु जो परंपरा में उन्होंने ज्ञान सुना है वही दोहराते हैं। तो तद्विधि शब्द से भगवान गुरु की आवश्यकता के बारे में बता रहे हैं। तद्विधि आप जानना चाहते हो इन सभी यज्ञों का क्या फल होता है, वो ज्ञान क्या है, उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान के पास जाना, गुरु के पास जाना चाहिए, और गुरु के पास जाने के लिए जाने के बाद क्या करना चाहिए, प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया, उनको शरण में जाना चाहिए, उनके शरण में जाना चाहिए। तो वो पहला चीज प्रणिपात, प्रणिपात मतलब डंडे की तरह उनके पास सामने गिरना चाहिए, जैसे सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए, वो दांत में क्या डालते हैं, वो दांते तृणधरी, वो क्या है, मैं अभी आपके सामने दांत के तृण के समान हूं, ऐसे उसका अर्थ होता है, तो उसको प्रणिपात कहते हैं। प्रकर्षेण निपातेन प्रकृष्ट रूपेण निपात प्रकर्षेण निपातेन, सो शरणागत रहना चाहिए, और परिप्रश्न न जिज्ञासा करना चाहिए, क्या जिज्ञासा करना चाहिए, श्रेय के बारे में, सर्वोच्च भलाई के बारे में, जीवन का लक्ष्य क्या है, परम सत्य क्या है, मेरा संबंध क्या है भगवान के प्रति, क्यों मैं भौतिक जगत में इतना सारे दुख यातनाओं को भुगत रहा हूँ, मैं कौन हूँ, ये सब प्रश्न पूछना चाहिए। और सेवया सेवा भी करना चाहिए उनको। तो हम लोग देखते हैं परीक्षित महाराज, जब सुखदेव गोस्वामी आए तो परीक्षित महाराज को उन्होंने अच्छी तरह, परीक्षित महाराज हालांकि पूरा दुनिया के राजा थे, सम्राट थे, फिर भी वो सुखदेव गोस्वामी को अच्छी तरह सेवा किया, पहले उनको आसन दिया, स्वच्छ आसन दिया, सब उनके पांव धोए, सब कुछ ये सब किया, तो इसको सेवया कहते हैं। उपदेक्षांति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, वो ज्ञान का उपदेश देते हैं, इसको ही दीक्षा कहते हैं। दीक्षा के बारे में भी बताया गया इसे, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम् तस्मा दीक्षेति शापोक्ता देशिकस्तत्व कोविदे। दिव्य ज्ञान का उपदेश देना ही क्या है? दीक्षा। दीक्षा का अर्थ नहीं, वो सेरेमनी वो है, वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है वो भी, लेकिन दिव्य उपदेश को प्राप्त करना उसको दीक्षा कहते हैं। उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सो तो गुरु को क्या होना चाहिए? गुरु के भी यहाँ पर लक्षण बताए, वो तत्वदर्शी होना चाहिए। तत्व क्या है बताइए फिर? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शक्यते। भगवान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। या अचिंत्य वेदावेद तत्व, हम लोगों ने चर्चा किया ना तत्व, उस श्लोक में तत्वदर्शियों का वर्णन हुआ ना, दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो उभयोरपि दृष्टंत त्वनयोस्तत्वदर्शिनः। यहाँ पर भी तत्वदर्शिनः शब्द है। ना इसलिए गुरु को एक कृष्ण के विज्ञान जानना चाहिए। वो कृष्ण का विज्ञान क्या है? वही अचिंत्य वेदावेद। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे, पढ़िए इस तात्पर्य को, अच्छा तात्पर्य।
निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से आरंभ होने वाली परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपने निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसे कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत 6:3-19 का कथन है, धर्मम तु साक्षात् भगवत् प्रणीतम्। पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतः मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पर प्राप्त नहीं हो सकता। ना ही ज्ञान धर्मों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके दीख स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का
सी। सेटिस्फेक्शन ऑफ द सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। महत्वपूर्ण है ना ये, गुरु को प्रसन्न करना ही हम आध्यात्मिक जीवन में यशस्वी हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना चाहिए गुरु के मार्गदर्शन में, तब गुरु भी प्रसन्न हो जाएंगे, है ना।
जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है।
तो जिज्ञासा कैसे होना चाहिए? चुनौती पूर्वक नहीं होना चाहिए, विनीत भाव से, समझने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए, नहीं कि गुरु की कितना ज्ञान है वो मैं परीक्षा करूंगा करके, ऐसे नहीं।
बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासा प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य ना केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अभी तो विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करें। प्रमाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है।
ठीक है। इस श्लोक में वो क्या बोलते हैं श्लोक प्रभुपाद, इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों को भर्त्सना की गई है। अंधानुगमन ब्लाइंड फॉलोइंग, जिज्ञासा हमेशा करना चाहिए, ये शिष्य का एक लक्षण है, वो हमेशा जिज्ञासा करना चाहिए, लेकिन निरर्थक जिज्ञासा नहीं करना चाहिए, है ना। वो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपा जी को प्रश्न पूछा, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ऐसे पूछा उसने। वो गिर गए ना एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 9/11 ब्लास्ट में, तो प्रभुपा जी ने उनको उत्तर दिया, ये खोरे खोरा होता है ना, खोरा खोरा में कितना बिंदु है, ऐसे पूछा प्रश्न। उत्तर उन्होंने एक प्रश्न के रूप में फिर से वापस पूछा, फॉग फॉग क्या बोलते हैं, कोहरा, तो उसमें कितना बिंदु है, जान के क्या फायदा होने वाला, ऐसा ऐसा प्रश्न कभी कभी लोग ऐसे प्रश्न पूछते। और प्रभुपा जी कभी कभी प्रश्न कुछ और होता था लेकिन उत्तर कुछ और होता था, प्रभुपा जी वो उत्तर अलग दृष्टिकोण से देते थे, वो प्रश्न के संबंध में उत्तर नहीं देते थे, जो लोगों को सुनना चाहिए वो उत्तर देते थे, जरूरत है उसको वो जो चाहते नहीं वो उसको उसको उत्तर नहीं देते थे। ठीक है। तो अगला, यज्ञात्वा न पुनर्मोहं यास्यसि एवं यास्यसि पांडव एनं भूतः शानि द्राक्षस्यात्मन्यतो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। भगवान बोलते हैं सभी जीव क्या है, मेरे है बोलते है। सब जीव मेरे है बोल रहे भगवान, सो जीवों से बहुत प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन हम लोग क्या क्या है, भगवान से अलग होना चाहते हैं, और इस भौतिक जगत में संसार में अलग अलग प्रकार के संबंध बनना चाहिए, ये मेरे है ये मेरे है वो मेरे है यू नो वो अलग है वो हमारे नहीं है, ऐसे द्वंद्वों में पड़ गए हैं इस भौतिक जगत में, इसको ही भ्रम कहते हैं। तो हम लोगों ने इसको पढ़ा था, इसके तात्पर्य के कुछ अंश को कब पढ़ा था, भगवद्गीता का क्या उद्देश्य है, ऐसे देहात्म बुद्धि से हमें मुक्त करना, भगवान के साथ संबंध को स्थापित करना, हमें जानना चाहिए कि हम भगवान के हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध है वो जानना। तो 33वां श्लोक में सभी यज्ञ ज्ञान में परिपूर्णता सिद्धि प्राप्त करती है, और उसको जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, वो 34वां श्लोक में वर्णन हुआ। इस श्लोक में वो ज्ञान क्या है, वो दिव्य ज्ञान क्या है, उसका वर्णन कर रहा है भगवान, ये जानना कि जीवात्मा मेरे है वही दिव्य ज्ञान है। तो दूसरे शब्दों में क्या है, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, समझ में आ गया, जीवात्माएं मेरे है, ऐसे यहां पर कह रहे हैं। तो इस ज्ञान ना होने के कारण हम लोग देहात्म बुद्धि में पड़ जाते हैं, सगे संबंधी माया में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसको समझने के बाद आप मोह से कभी ऐसे मोह में को प्राप्त नहीं हो गए। अर्जुन को कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अभी मोह में थे, मैं सगे संबंधी है उनको कैसे मैं मारूंगा, तो इससे हमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई सुख नहीं मिलने वाला है, ऐसे मोह में पड़ गए हैं, देहात्म बुद्धि में, मैं कैसे उनको मारूं, अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, जिम्मेदारी को भूल गए। तो ये तो मैं हम मोह में नहीं पड़ेंगे, फिर उसके बाद में क्या होता है, हम अपने मूल स्थिति में स्थित हो जाएंगे। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम यास्य एवं यास्यसि पांडव। सो इसको प्राप्त येन भूताश भूतान्यशेषेन द्रक्षस्य आत्मन्यतो महि। वो सभी जीव मेरे अंदर है, परमात्मा में है और मेरे है। तो यहाँ पर कैसे अचिंत्य भेदाभेद तत्व हो गया बताइए, सभी जीव उनके अंदर है और वो मेरे है। या समझ में आ गया, मेरे में है मतलब वो भगवान के शक्ति है, भगवान को, भगवान और उनके शक्ति को छोड़कर कुछ भी नहीं है इस जगत में, और वो मेरे है मतलब उनका अलग अस्तित्व भी है। समझ में आ गया, यही दिव्य ज्ञान, यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। भगवद गीता में अचिंत्य भेदाभेद तत्व को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं है, बस वही है। समझ में आ गया, यही दिव्य ज्ञान भी है, यही ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ये जो जानते हैं उसको ही तत्वदर्शी कहते हैं, यही चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया। ये वेदों का परिपूर्ण ज्ञान है, ये समझ में आ गया। तो आगे जाएंगे, इस तात्पर्य को हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। क्या हुआ, वो कौन सुप्रीम है, यू शुड डोंट नो। या वो परमात्मा में है सबको, सभी है ना,
पार्ट
ऑफ द सुप्रीम, और पार्ट इज ऑफ द सेम नेचर, नो दैट इज वननेस, एंड बिकॉज इट इज पार्ट देयरफॉर इट इज डिफरेंट। Yeah, that in that sense, that actually it is in that sense, but you are confusing, you are quoting Mamayavamsha, right? You are understanding that they are part of mind means you are seeing from the point of view of Mamayavamsha. In that way also if you take, that is also Achintya Veda, there is. So, in one sense, they are part of the Supreme यहाँ पर है ना दैट वर्ड कम्स ना व्हाट इज दैट सी येन सर्व येन भूतान अशेषानि द्राक्षस आत्मनि अतोमयी सो यू विल सी ऑल ऑफ देम इन परमात्मा इन आत्मनि मीन्स परमात्मा इन सुपर सोल अतोमयी देयरफॉर दे आर माइन यू गॉट द आइडिया So you will see all of them. Asheshani means not excluding some. सब कुछ उनके अंदर आप देखेंगे आत्मा के परमात्मा के अंदर देखेंगे इसलिए therefore क्या है वो मेरे है ऐसे बोल रहे इसका अर्थ क्या होता है Everyone is the energy of Krishna. And we are Krishna. We belong to Krishna. Got the idea? So, इसलिए अचिंत्य भेदाभेद और इसके कारण भगवान प्रभुपाद जी यहाँ पर ही इज डिफाइनिंग कंप्लीट होल तात्पर्य में क्या है परम पूर्ण का वर्णन कर रहे पूर्ण का मतलब जिनके अंदर सब कुछ है Got the idea? Where you are getting this point that oh, they are part of? Okay, translation is like that, but But the meaning of that whole statement is what? That पूर्ण के पूर्ण में है और वो मेरे है अलग अस्तित्व भी है उनका ठीक है उनका इंडिविजुअलिटी भी है सब कुछ भगवान में है और सब भगवान अलग भी है इसलिए प्रभुपाद भी वो मायावादी जो दर्शन है उसको भी खंडन कर रहे हैं ना कि उनका क्या हो जाता है वो लोग सोचते हैं कि उनका अस्तित्व खो जाता है सब कुछ मेरे में है मतलब सभी लोग एक ही है ऐसे या उनसे कुछ निकल जाता है तो उनका अस्तित्व खो जाता है ऐसे वो लोग सोचते हैं ठीक है तो और प्रभुपाद अंत में बोलते हैं कि अंत में वो जो महत्वपूर्ण है अंतिम भाग जो है तात्पर्य के पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय है और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं क्योंकि वे अपने अस्तित्व पृथक समझते हैं इस तरह मेरे है वो मेरे है इसका अर्थ है माया शब्द का अर्थ क्या होता है हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं वही माया रतेतम न प्रतियेत रतेतम न तम विद्याद आत्मनो मायम यथा भासम यथा तम माया का परिभाषा वो चतुर्श्लोकी भागवत में दिया गया अपने आप को भगवान से अलग समझना तो यहाँ पर वही बताया गया उसको ही माया कहते हैं क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जीव कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं तो यह समझा जाता है कि वे मुक्ति पथ पर है जिसके पुष्टि भागवत में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में की गई है मुक्ति हित्वानता रूपम स्वरूपेन व्यवस्थिति मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमः सर्वज्ञानाप्लवे नैव व्रजिनं संतरिष्यसि यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। श्री कृष्ण के संबंध में अपने स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से या क्या बता रहे था अपिचेदसि पापेभ्यो मेरा मन दूसरा चल रहा चला गया। अपिचेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमः सर्वज्ञान प्लवेन एव व्रजिनं संतरिष्यसि। उस दिव्य ज्ञान को पिछले श्लोक से भगवान इस दिव्य ज्ञान क्या, पिछले श्लोक में दिव्य ज्ञान क्या है वर्णन किया उन्होंने, और उससे क्या हो जाता है, मोह में नहीं पड़ते हैं ऐसे बताया। इसमें वो उसको क्या 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 दिव्य ज्ञान को एक नाव से तुलना करते हैं। सो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत को कभी कभी एक दावानल से तुलना किया गया है, कभी कभी सागर से तुलना किया गया। तो सागर से तुलना किया, सागर में क्या होता है, लहरें आते हैं, ऊपर नीचे मारते हैं हम लोगों को, कभी हम ऊपर उड़ते हैं कभी नीचे हमें पीटा जाता है। तो मतलब पुण्य करते हैं तो हम लोग ऊपर उड़ते हैं और पाप करते हैं तो हमें नीचे मारा जाता है, लेकिन दोनों क्या है, सफरिंग है। हबुडुबु बाय है वो अनादि कर्म पले पड़ी बवार सारी बारी ना वजे की, उसी गीत में आता है। हाँ, राधा कृष्ण उसमें आता है। तो वो ऊपर नीचे ऐसे हमें मारा जाता है, तो ये सागर है। और सागर में क्या है, बहुत सारे क्रूर जलचर भी है। एक जलचर है माधवेंद्र, आपको खींचते रहेंगे। अच्छा, इसे जोक कर रहा हूँ, माफ कीजिए। नींद चला जाता ना इसलिए ऐसे। तो ऐसे जलचर भी होते हैं, तकलीफ देते रहते हैं ना, पति पत्नी बच्चे, वो लोग क्या है ऐसे खींचते रहते हैं, ऐसे आपको चूसते रहते हैं। तो ये ठीक नहीं है भौतिक जगत। तो इस नाव का आश्रय ले लेंगे, इस दिव्य ज्ञान के जो नाव है उससे आश्रय ले लेंगे तो हम ऐसे सागर को पार करके चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले भी वर्णन हुआ ना उसका, परम पदम क्या समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशोमरारि भवाम्बुधिर्वस्त पदम परम पदम परम पदम यद विपदाम न तेषाम। तो यतैदांसी समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। तो पहले भगवान उसको दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने से हम लोग भौतिक मोह से मुक्त हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग ये भव सागर को पार करके जाएंगे। अभी बता रहे कर्म के जो फल है उसको पूरी तरह से जला देती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। तो प्रभुपाद वो अलग अलग प्रकार के कर्म फल इसमें वर्णन कर रहे हैं। वो कौन सा श्लोक है आपको पता है ना, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलियते विष्णु भक्ति रतात्मना। विष्णु पुराण ना, वो पद्म पुराण या विष्णु पुराण, नवे अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख किया गया वो श्लोक, तो हम लोग बाद में उसको चर्चा करेंगे। तो चार प्रकार के जो फल होते कर्म फल होते उसको ये ज्ञानाग्नि जो है वो जला देते। तो अभी जो हम लोग 20वें श्लोक में भी देख रहे थे, वहां पर भी इसको अग्नि से तुलना किया गया दिव्य ज्ञान, और दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति वो अग्नि जैसे जला देते उसके सभी कर्म है जल गए होते हैं, ऐसे वहां पर वर्णन हुआ था। याद है आपको, हमने बताया था, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे करके। बोले उसको 20वें श्लोक को, नहीं 19वां, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्र तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है, उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं। जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया, पूर्ण ज्ञान के अग्नि से भस्मात कर्म दिया, और यहाँ पर वही ज्ञान का जो गुणगान करते हुए भगवान उसको अग्नि से तुलना करते हैं, वो नष्ट कर देता है। रूप गोस्वामी भक्ति को भी क्लेशाग्नि करके बताया, वो छह लक्षणों में एक लक्षण क्या है, क्लेशाग्नि। भक्ति एक अग्नि के समान कार्य करती है, सभी क्लेशों को नाश कर देते हैं। क्लेश क्या कैसे आते हैं, ये कर्म फलों से आते हैं, ठीक है। वहां पर भी रूप गोस्वामी वो श्लोक को उल्लेख किया अपना क्लेशाग्नि। तो भक्ति रसामृत सिंधु के पहले अध्याय में ही ये छह लक्षणों का वर्णन हुआ है, तो वहां पर भी ये श्लोक, वो कौन सा श्लोक, विष्णु पुराण का, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम प्रलोमकम, वहां पर उसको उल्लेख किया। और यहाँ पर बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया उबे उहय, क्या है, उबे उहय वैश एते तरत्य अमृत साध्व साधुनी वन ओवरकम्स बोथ पायस एंड इम्पायस रिएक्शंस ऑफ वर्क, ठीक है। सो आगे नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं निह विद्यते तस् संध्यो कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उद्दत्त तथा शुद्ध नहीं है, उदात्त तथा शुद्ध नहीं है, ऐसे ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। और क्या है ये दिव्य ज्ञान, क्या है इसका, क्या गुणगान महत्व है, तो इसके तुलना में कोई अन्य चीज नहीं है। आप जानते हैं ना दिव्य ज्ञान का अर्थ क्या होता है, अचिंत्य वेदावे तत्व करके बताया, भगवान हमारे बीच में क्या संबंध है उसको ही दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो इसके आरंभ में भी भगवान अपने बारे में दिव्य ज्ञान प्रदान किया और आत्मा के बारे में वो दूसरे अध्याय में उन्होंने वर्णन किया। तो इसके सदृश और कोई नहीं है, और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अचिंत्य वेदावेद तत्व के समान जो शुद्ध और कुछ नहीं है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः। तो दसवें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं आध्यात्म विद्या विद्या नाम, हम लोग चर्चा किया ना 14 प्रकार के विद्या होते हैं उसमें आध्यात्म विद्या, और वो आध्यात्म विद्या क्या है, वही दिव्य ज्ञान है, वही हमारे और भगवान के बीच में संबंध जो है। इस अध्याय के अंतिम तात्पर्य में वो उल्लेख प्रभुपाद वर्णन करते हैं उसको। सो ज्ञानमय यज्ञ में हमने उसको उल्लेख किया था अभी कुछ श्लोकों के पहले ही, ज्ञानमय यज्ञ में दो प्रकार के विभाग, दो विभाग होते हैं, आत्मा के बारे में ज्ञान और भगवान के बारे में ज्ञान। तो इसको ज्ञानमय यज्ञ, वही दिव्य ज्ञान है, ठीक है। तो उसके सदृश कोई नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनिविन्दति, ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, तो सभी योग का फल है वो। कालेनात्मनि विन्दति, तो ये जो भक्ति में सिद्ध हो जाता है तो समय पर क्या है वो उसको आस्वादन करता है। प्रभुपाद वर्णन करते हैं जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारे प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निस्संदेह दिव्य ज्ञान का समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारे मुक्ति का यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान में अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। तो भक्ति का परिपक्व फल क्या है? ये भक्ति योग पद्धति का परिपक्व फल है। वो शुद्ध भक्ति में स्थित हो जाता है और वो बहुत ही शांत हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद, कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हम लोग शांत हो जाते हैं, है कि नहीं? अन्य कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ता। ज्ञान, दूसरे शब्दों में ज्ञान और शांति का पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवद गीता का संदेश की यही चरम परिणति है। तो अंत में सर्वधर्मां परित्यज, मेरे भक्ति करो, ऐसे वो। तो अगला श्लोक, श्रद्धा वालभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। सो कौन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं? तो वो श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। दो योग्यता चाहिए, एक है श्रद्धावान होना चाहिए और इंद्रिय संयमित होना चाहिए। तो ये दो, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेनाधिगच्छति। तो श्रद्धावान व्यक्ति होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ प्रभुपाद फिर से वो दोहराते हैं, बार बार भगवद्गीता में आएगा ना। तो क्या है? तो श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृते होवे। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति को ही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। और जब वो इंद्रियों को भी, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये श्रद्धा कैसे जागृत होता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, और भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से प्राप्त होता है, ऐसे बोलते हैं। तो और इंद्रियों को संयमित करना चाहिए, तभी ये दिव्य ज्ञान है वो प्राप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने भी चर्चा किया था, भगवद्गीता का ज्ञान कौन योग्य है उसको प्राप्त करने के लिए? दूसरे शब्दों में शिष्य का क्या लक्षण होना चाहिए? तो इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। वो लोग जो तपस्या नहीं किया है उनको ये ज्ञान प्रदान नहीं करना चाहिए। उसका दूसरा अर्थ क्या है? वो इंद्रियों को निग्रह नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपने इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत का ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। पिछले श्लोकों में भी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया था, जब तक हम लोग इंद्रियों को काबू नहीं करते, इंद्रियों को ऊपर निग्रह नहीं प्राप्त होता, तब तक ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी वो तात्पर्य के अंत में बताया था ना, जो कम खाने से इंद्रियों को निग्रह करने में बहुत सहायता का होता है, ऐसे प्रभुपाद जी वर्णन किया था। क्योंकि ये सब योग यज्ञ का क्या अर्थ है? हमें इंद्र तृप्ति से अलग करके, हमें दूर लेकर, हमें भगवान की सेवा में लगाना है, वही उनका उद्देश्य है। तो इसलिए इंद्रियों को निग्रह करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रभुपाद जी बार बार कहा करते थे, जो भी योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो या ज्ञान योग हो, सभी योगों में पहला चीज क्या है? कर्म योग हो। पहला चीज क्या है? इंद्रियों को निग्रह करना, उसके बिना होगा नहीं। तो वो महत्वपूर्ण चीज है। तो अगला श्लोक, अज्ञस्य श्रद्धादानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं न संशयात्मनः। 29वां श्लोक में माता जी, 29वां श्लोक में ये 39 इट इज 29 ना 39 39वां श्लोक में भगवान कौन इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में, इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर उनके बारे में बताया। तो श्रद्धावान होना चाहिए और इसका अर्थ भी क्या है, श्रद्धावान मतलब उनको इसको प्राप्त करने की आकर्षण होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, चाहिए चाहिए मुझे, ऐसे लोभ होना चाहिए, उसको ही श्रद्धा कहते हैं। और दूसरा है इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान कौन इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते उसके बारे में वर्णन करते हैं। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति है, व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। वो नॉट ओनली वो कौन प्राप्त नहीं कर सकते उनके बारे में, और प्राप्त ना करने के कारण उनका स्थिति क्या होता है उसको भी वर्णन करते हैं। उनका स्थिति क्या होता है, श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं। वो तीन लोगों के बारे में भगवान बोल रहे हैं, अज्ञस्य, अज्ञ मतलब मूर्ख जिनके शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जैसे पशु की तरह रहते हैं वो लोग, वो सिर्फ खाने पीने में और मौज मस्ती करने में ही उनका जीवन चला जाता है। हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन नराधम है, तो वो अज्ञ है या मूर्ख, मूर्ख और नराधम दोनों ही इसमें आते हैं। वो लोग बहुत मेहनत करके सिर्फ खाना पीना सोने में मैथुन में जीवन बिताते हैं। अश्रद्ध दानश्य, सो वो शास्त्रों को का ज्ञान हो सकता है उनको, लेकिन उसके ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो वो दूसरा वर्ग है। और तीसरा वर्ग है वो शास्त्रों को उल्लेख भी कर सकते हैं लेकिन वो मानते नहीं उसको, संशय आत्मा। तो ऐसे तीन प्रकार के लोग हैं और उनका नतीजे क्या हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए अंत में हमने चर्चा किया श्रद्धा का अर्थ क्या होता है। गीता और भागवत में जो उपदेश दिया गया है, दिव्य ज्ञान में दिया गया है, उसके ऊपर श्रद्धा होना, विश्वास होना, उसको श्रद्धा कहते हैं। रूप गोस्वामी उसका परिभाषा दिया है ना, तो भक्ति रसाम सिंह में हमने बार बार इसको बताया है। अभी हम लोग जब चर्चा कर रहे थे भगवद्गीता के ऊपर, तो इसलिए ये शास्त्र के संबंध में इसके इन तीनों के यहाँ पर क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। अज्ञ व्यक्ति वो है जिसको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और श्रद्धाविहीन व्यक्ति अश्रद्धदान वो व्यक्ति है जो विश्वास नहीं करता है शास्त्र के ऊपर, और तीसरा है संशय आत्मा वो संदेह करते हैं उसके ऊपर। तो ऐसे तीन प्रकार के जो भगवद्गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य है, हमने इसको भी चर्चा किया था, भगवद्गीता कौन समझ नहीं सकते हैं उसके बारे में, जब ये तीनों बार लोगों के बारे में, उनमें तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। जो लोग पशुतुल्य है, अज्ञ का ये वर्णन है, जो लोग पशुतुल्य है उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोग भी होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उदाहरण देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं रखते करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवद्गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती है, फिर भी वे ना तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं ना उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है वो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति कर नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते उन्हें ना तो इस संसार में और ना भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। दे नेवर अटेंड एनीथिंग, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान के ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुँच सकता है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्यों को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करें और सफलता प्राप्त करें। योग संन्यस्त कर्माणां ज्ञान संचिन्य संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म कलों को परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके है होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बांधता। तो क्या क्या लक्षण है उस व्यक्ति का? कर्म फल को त्याग दिया है, भक्ति करता है, भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं। तो ये तीन लक्षण बताए गए है ना। पहला है कि कर्म फलम को संन्यस्त मतलब त्याग देता है। दूसरा है वो भक्ति में लगा होता है और दिव्य ज्ञान से उसके कर्म विनष्ट हो चुके, वही आत्मपरायण है। आत्मवंतम, आत्मपरायण मतलब आत्मवंतम, वो हमेशा आत्मा के कार्यों में लगा रहता है। न कर्माणि निबध्नन्ति, उसको कोई कर्म बंधन नहीं, वो कर्म बांधते नहीं। जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा के उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी तो वह दिव्य ज्ञान की कुछ कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतः निस्संदेह वह कर्म बंधन से मुक्त होता है। इस तात्पर्य में प्रभुपाद भगवद्गीता यथारूप का क्या महत्व है उसको वर्णन करते हैं। यथारूप जैसे उन्होंने हमें भगवान ने दिया था। तस्माद्ज्ञान सम्भूतं रसनं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगं आतिष्ठोतिष्ठ भारत। क्योंकि भगवद्गीता यथारूप में ही अचिंत्य वेदाभेद का ज्ञान होता है, उसी में दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए और ये अंतिम श्लोक इस अध्याय का, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शास्त्र से काट डालो। क्या करना चाहिए? वी हैव टू कट दैट विद द स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। हे भारत, हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। तीन चीज क्या बोल रहे भगवान? जो संशय है इस दिव्य ज्ञान से काटो और योग से समन्वित होकर योग युक्त होकर युद्ध करो, ऐसे बोल रहे। ठीक है, तो प्रभुपाद इस अध्याय का सारांश बताते हैं। पढ़िए तात्पर्य। और भगवद्गीता का भी गुणगान करते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य।
इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वे सनातन योग कहलाते हैं।
तो इस दिव्य ज्ञान योग जो है वो सनातन योग भी है। तो क्योंकि वो वास्तविक ज्ञान प्रदान करता है, हमारे भगवान के साथ जो संबंध है उसको हमें बताता है। या
योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए कभी अभी नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रिया भी दो प्रकार से होती है, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषय तत्व सत्य। जो भगवद्गीता के मार्ग का पालन करता है वे ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभ कर क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया
है ना, उनके बारे में पहले दिव्य ज्ञान प्रदान किया उन्होंने।
जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वे श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वे निपट बोल कृष्ण भावना के सिद्धांतों को स्वीकार करके ज्ञान को क्रमशः दूर किया जा सकता है। ये कृष्ण भावनामृत विविध देव यज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मचार्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और प्रणाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कार्यकलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवद्गीता का वास्तविक पाठ है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वे नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वे सेवा और समर्पण समेत किसी प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद्गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करें। प्रमाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वे परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विकृत नहीं होता, जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवद्गीता के उपदेश इस धराधाम में आए। अतः गीता में ही व्यक्त भगवद्गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपत करते रहते हैं। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष हैं और उनकी क्रियाकलाप दिव्य हैं। जो इसे समझता है वे भगवद्गीता का अध्ययन शुभारम्भ करते ही मुक्त होता है।
तो भगवद्गीता का गुणगान कर रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना, और क्यों भगवद्गीता का अध्ययन जरूरत है ऐसे बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में दिव्य ज्ञान क्यों जरूरत है उसके बारे में और कुछ। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी दक्षिण भारत में भी होता है ना, बालाजी को बालाजी के साथ बहुत आदान प्रदान होता है। लोग किसके लिए जाते हैं वहाँ पर, सिर्फ कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको अच्छा सुविधाजनक जीवन मिलता है अगले जीवन में, बस और कुछ नहीं। क्योंकि एटीट्यूड्स बहुत महत्वपूर्ण है एटीट्यूड, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है उसमें कि उनका थोड़ा तो भगवान के बारे में, भारत में क्या होता है ना, थोड़ा तो भगवान के बारे में उनको होता है, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ सुकृति तो बढ़ता है ना, धीरे 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 धीरे, है ना। वो भक्ति नहीं है, वो सुकृतिवान है, वो लोग सुकृति अर्जित कर रहे हैं, वो भक्ति नहीं है, भक्ति के पहले के स्तर है। जनाह सुकृति नो अर्जुना, बहुत सारे भक्त भी इस काल में सुकृति ना होते ज्यादा से ज्यादा। तेषां तंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। दृढ़ पूर्वक कौन भक्ति करते है, जो सभी पापों से मुक्त है। ठीक है, और कुछ समझ में आ गया? मैं और दोनों, आप दोनों समझे उसको मैं क्या बताना चाहता था। हाँ
जी, तो श्लोक में आपने बताया था कि से और मन से और बुद्धि से संपूर्ण होता है, तो उदाहरण दीजिए ना, स्पष्ट नहीं कर दीजिए।
हाँ, प्रभुपाद जी ने वहाँ पर इसलिए ना होमवर्क करने के लिए बताया आपको। प्रयास कीजिए, आज कल हम बताएंगे। ठीक है, और कुछ?
कार्य करते लास्ट में भगवान का नाम करते हैं, ऐसा करने से उसमें जो व्यक्ति है सफल हो जाती है, उसमें जो त्रुटियाँ होती है।
आजकल क्या पता नहीं वो लोग क्या पालन करते हैं, किनको प्रशिक्षण है। प्रभुपाद जी इसलिए बार बार कहा करते थे ना अपने ग्रंथों में, कलयुग में योग्य ब्राह्मण नहीं है करके। वो जो यज्ञ का वर्णन आता है शास्त्रों में, उसमें गाय को आहुति इसलिए दिया जाता था कि ब्राह्मण के मंत्रों को उच्चारण करने की शक्ति को परीक्षा करने के लिए जो बूढ़ा गाय को उसमें आहुति देते थे, और वो तुरंत ही मनुष्य रूप को प्राप्त करता था। तो ये नहीं हो रहा तो वो योग्य ब्राह्मण नहीं है, उसको निकाल देते थे उसको। तो कहाँ आपको मिलने वाला है सब, ये सब, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए हरिनाम संकीर्तन बताएगा इस कलयुग में। वेदों को पालन करना, वेदों को अध्ययन करना, वेदों को पालन करना कलयुग का बस की बात नहीं है। हमने बार बार बताया ना इसके बारे में, लोग जब पूछते हैं वेद दीजिए, हम वेद पढ़ना चाहते हैं, तो उनको पता नहीं वो क्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे पता नहीं है। और कुछ है? प्रकर्षेना, उसको विस्तारित करते वो संधि भेद करके उसको, या उसका परिभाषा है निरुक्त में ऐसे परिभाषा दिया, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दैट, डिक्शनरी मीनिंग मीन्स बाय नेचर लाइक अ डंड। आई गेव एग्जांपल नो, वो ऐसे शरणागत रहता है कि वो स्वभाव हो गया उसका, ऐसा नहीं कि उसको बाध्य करना पड़ता है। प्रकर्षे न निपात है ना। हमने चर्चा किया ना उसको, भक्ति योग का ये योग जो पद्धति है उसका फल है वो, यू नो। उसके पहले भी प्रभुपाद जी ने वर्णन किया ना, सभी योगों को ज्ञानमय या द्रव्यमय यज्ञ करने से भगवान ने स्वयं होता है ना ज्ञान में या सिद्धि प्राप्त करता है। तो योग, ये योग का जो सीढ़ी है या योग का जो ये मार्ग है, उसको पालन करने से इस ज्ञान में हम लोग प्राप्त पहुंच जाते हैं। और हमने इसलिए बताया, भगवान कृष्ण भगवान है और हम उनके नित्य दास है, इस ज्ञान के स्तर तक आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है ये सब वर्णन कर रहे हैं। हाँ, वैदिक सभ्यता में क्या क्या करते थे, तो उनको ऊपर उठाते थे। और अंतिम में ना, नहीं उसके पहले के एक तात्पर्य में, कृष्ण भावनामृत को स्तर तक आने के लिए ये सब किया जाता है ऐसे बोलते। नहीं, उसका अर्थ हमने बताया योग पद्धति को पालन करने का परिपूर्णता है ये, ऐसे हमने बताया उसका अर्थ। क्योंकि उसके वो वाक्य के आगे प्रभुपाद जी क्या बोलते, देखिए वो और उस श्लोक में भी ऐसे बताया गया, ही विल रिलीश दैट नॉलेज एक्चुअली। तो रिलीश कहाँ पर होता है, वो भक्ति करने में होता है ना, कृष्ण भावनामृत में ही विल इन द आफ्टर दैट वन आर टू स्टेटमेंट्स यू सी लास्ट स्टेटमेंट लास्ट और सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द पर्पट। यू सी डिवोशनल सर्विस प्रोड्यूसेस दैट नॉलेज एंड दैट नॉलेज यू नो कल्मिनेट्स इन टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो जब डिवोशनल सर्विस वो उपयोग करते हैं, वो पूरा हम लोगों ने चित्र बनाया था ना, भक्ति योग योग पद्धति को पालन करके वो ज्ञान में परिपूर्णता होती है कि भगवान कृष्ण ही भगवान, वो चिंत्य वधि भेदा भेद तत्व का ज्ञान हमें हो जाता है, फिर हम लोग कृष्ण भावनामृत में लग जाते हैं, है ना। गॉट दैट, हमने उसको वर्णन अच्छा अच्छा किया। फिर तो अलग अलग समय पर प्रभुपाद जी क्या क्या शब्द उपयोग करते हैं किसके लिए वो समझना चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। वो टेक्निकल है, एक्सप्लेन करते हैं। वास्तव में प्रभुपाद बहुत टेक्निकल है उनके तात्पर्य में, लेकिन वो टेक्निकली नहीं, जो जानना नहीं चाहते हैं उनके लिए भी भगवद गीता का सार प्राप्त होना चाहिए, इसलिए बार बार वो भक्ति कृष्ण भावनामृत लिख देते हैं। उसको जो पूरा योग पद्धति है उसके बजाय वो क्या लिख देते हैं, कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग ऐसे लिख देते हैं। समझ में आ गया, वो टेक्निकल भी है एक ही समय, वो भी अचिंत्य भेदा भेद, प्रभुपाद जी ने अचिंत्य भेदा भेद के अनुसार उन्होंने प्रस्तुत किया सब कुछ, वेरी नाइसली पुट इट। और कुछ तो पंचम अध्याय शुरू करना है, और कुछ पूछना है। लेकिन उसको भगवान ने वर्णन किया ना, मई मई मई, वो मई शब्द को कैसे वो करेंगे, वो दैट इज अचिंत्य भेद, यू कैन नॉट इम्पर्सनल, इट इज नॉट इम्पर्सनल ज्ञान। 35वां श्लोक में बताया ना, वो आपको मोह से मुक्त करेगा और तब आप देखेंगे कि ये सभी जीव मेरे हैं, कर उनके भगवान के साथ संबंध के बारे में वो बता रहे हैं। हाउ दे कैन मिस इंटरप्रेट दैट, दे कैन नॉट मिस इंटरप्रेट दैट, इट इज वेरी क्लियर। गलत अर्थ नहीं सकते उनका, प्रश्न का समझ में आ गए कि ज्ञाने परिसमाप्यते, ऐसे भगवान ज्ञान में परिपूर्णता हो जाता है। तो ये ज्ञानी लोग निर्विशेषवादी लोग, हम लोग क्या बता रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में वो परिपूर्णता प्राप्त होता है ज्ञान, ऐसे बता रहे हैं। ज्ञान है समय उसको वो लोग कैसे कैसे अर्थ निकाल सकते हैं कि, लेकिन भगवान ने उस ज्ञान को क्या परिभाषा दिया, उस ज्ञान होने के बाद वो व्यक्ति देखेगा कि सभी जीव मेरे अंदर है और मेरे हैं सभी जीव, उसका अर्थ क्या है, भक्ति का ज्ञान है, ठीक है। वो कैसे गलत, क्योंकि भगवान ने पूरी तरह अच्छी तरह से परिभाषा दे दिया उसको। क्योंकि थोड़ा सेक्रीफाइस एलिमेंट ऑफ सेक्रीफाइस है, उसका प्रगति हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन वो उसके ऊपर भी निर्भर है कि उसके साथ साथ क्या करते हैं। कलयुग में लोग प्रगति नहीं करते हैं बहुत, क्योंकि उसके साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, बहुत पाप भी करते रहते हैं। 12वें अध्याय में फिर और प्रभुपाद जी वर्णन करेंगे उसको आरंभ, क्योंकि भगवान ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, ये नहीं कर सकते हो तो ये करो बोलते हैं। भगवान को समर अपने फल को, कर्म के फल को भगवान को समर्पित नहीं कर रहे, कम से कम कुछ तो किसी को तो उसको दान दे दो। तो कुछ उस इंद्र तृप्ति की जो आसक्ति है और फल के ऊपर जो प्रभुत्व जमाने का जो भाव है, मैं इस फल का सृष्टा हूँ, और उसको इंद्रिय भोग में उपयोग करने से थोड़ा तो अनासक्ति जागृत हो जाता है, वो तो उसको फल मिलना चाहिए। लेकिन कलयुग में इतना लोग पापी है और वो कुछ देना भी नहीं चाहते हैं, तो इसलिए उनको कभी अनासक्ति नहीं होता है, वो फल भी नहीं होता, वो मिला तो भी बहुत धीरे होता है उसका, बहुत धीरे। या भगवान को दे दिया तो ठीक है, वो पाप करते हैं उसके साथ साथ वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। मतलब नष्ट कैसे होता है, उनके अंदर श्रद्धा आकर्षण बढ़ जाता है भक्ति के प्रति, भक्तों को संग करने के प्रति, तो उससे भक्त लोग क्या करेंगे, उनको प्रचार करेंगे, तो उससे धीरे धीरे वो दृढ़ भक्ति में लग जाएंगे, पाप कर्म उनको त्याग देंगे। तो भगवान इसलिए वो वहाँ पर क्या है, भगवान की कृपा भी बहुत जरूरत होता है। ठीक है, और कुछ है? Hare, we'll continue this tomorrow maybe. We'll continue tomorrow. Today some off. Sab prasan ho jayega, huh? Theek hai. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. नाइस ना, अचिंत्य वेदा वेदा इज सो नाइस राइट, भगवद्गीता इज ओनली अचिंत्य वेदा वेदा, नथिंग एल्स।